पाठ 45 अध्याय 32 जारी। पिछले सप्ताह हमने मूसा के इस तथाकथित गीत का अध्ययन शुरू किया जो व्यवस्था विवरण अध्याय 32 का आधार बनता है। ये कार्य बहुत गहरा है। ये उन सिद्धांतों की व्याख्या करता है जो व्यावहारिक और भविष्य सूचक, प्रकट और रहस्यमय हैं। ये मामलों को द्वैत में समझाता है, अर्थात दो एक साथ दृष्टिकोणों से। भौतिक सांसारिक अभिव्यक्तियों का दृष्टिकोण जिसे मानव जाति जान सकती है, समझ सकती है और अनुभव कर सकती है, और आध्यात्मिक स्वर्गीय अभिव्यक्तियों का दृष्टिकोण भी जो अदृश्य हैं और मनुष्यों के लिए काफी हद तक अज्ञात है। वास्तव में पद 1 से 43 एक गीत है, वे एक कविता है जिसे संगीत के साथ गाया जाना था और सभी इसराइलियों द्वारा एक गीत के रूप में याद किया जाना था। यह एक ऐसा गीत है जिसे यहोवा ने मूसा से इसराइल के खिलाफ एक गवाह के रूप में लिखने के लिए कहा था, जब भविष्य में इसराइल परमेश्वर से दूर हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसराइल को अपने अनमोल वादा किए गए देश से विपत्ति और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। यह गीत ईश्वर के लोगों के लिए एक चेतावनी, एक आशा, एक निंदा और मुक्ति का मार्ग है, और जैसा कि हमने हाल ही में चर्चा की है, यह अपनी भविष्यवाणियों के पूरा होने से काफी पहले लिखा गया है ताकि इसराइल के लोग पूरी तरह से समझ सकें कि उनका विनाश और उनका निर्वासन संयोग या भाग्य नहीं था। यह इसलिए भी नहीं था क्योंकि ईश्वर उनके प्रति विश्वासघाती था, या वह उनका बचाव करने में असमर्थ था, या इसलिए कि शत्रु राष्ट्र जो इसराइल को जीतना चाहते थे वे यहोवा से अधिक शक्तिशाली थे या उनके पास अधिक शक्तिशाली देवता थे, बल्कि यह इसलिए है कि इसराइल ने प्रभु को त्याग दिया और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वह उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कारण है। इसराइल ईश्वर के दिव्य क्रोध को झेल रहा है, भले ही यह सतह पर ऐसा प्रतीत हो कि यह केवल आसपास के राष्ट्रों के बुरे निर्णयों का परिणाम है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमेशा से ही गैर यहूदी राष्ट्र ही इसराइल के साथ बुरा व्यवहार करते आए हैं और करते रहेंगे। मैंने सुना है कि इसराइल को दंडित करने के लिए प्रभु द्वारा गैर यहूदियों का उपयोग करना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अब वह गैर यहूदियों, विशेष रूप से चर्च को इसराइल से अधिक महत्व देता है, या कि अब शेष विश्व को इसराइल के साथ समान स्तर पर रखा गया है। वास्तव में जैसा कि हम इस गीत में देखेंगे, यह इन गैर यहूदी राष्ट्रों की दुष्ट प्रकृति है जिसका उपयोग परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए कर रहा है, और वह उद्देश्य अपने लोगों इब्रानियों को दंडित करना है। विडंबना यह है कि चूंकि ये राष्ट्र स्वाभाविक रूप से दुष्ट हैं, इसलिए प्रभु बदले में इन गैर यहूदी राष्ट्रों को उनकी दुष्टता और इसराइल के साथ उनके भयानक व्यवहार के लिए दंडित करेंगे। ये मेरे लिए यह समझाने का एक अच्छा अवसर है कि आज इसराइल और मध्य पूर्व में क्या हो रहा है। यह ईश्वर की पूर्व निर्धारित, पूर्व घोषित छुटकारे की योजना को कार्यान्वित करने से कम नहीं है। मैं हर बार हंसता हूं, शायद थोड़ी शैतानी हंसी, जब मैं अनगिनत समाचारों में से एक को देखता हूं या किसी अन्य राजनेता या राजनीतिज्ञ या पंडित को यह बताते हुए सुनता हूं कि मध्य पूर्व इतना अराजक क्यों है और इसे बचाने की उनकी योजना क्यों काम करेगी, जबकि कोई और नहीं कर पाया। यहां तक कि चर्च का एक अच्छा हिस्सा इसराइलियों और फिलिस्तीनियों, इसराइलियों और सीरियाई लोगों, इसराइलियों और मिस्रियों, इसराइलियों और जॉर्डनियों, इसराइलियों और लेबनानियों, इसराइलियों और सूदी लोगों के बीच अंतहीन शांति और सुलह की दिशा में काम करना चुनता है। और भी बहुत कुछ, लेकिन हमेशा यह इसराइली और कोई ना कोई होता है। इसलिए दुनिया भर में आम धारणा ये है कि समस्या यहूदी ही है, और एक तरह से वे जो सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग वे सही हैं। बेशक उनके लिए यहूदियों के साथ समस्या यह है कि उन्होंने अस्तित्व में रहने का साहस किया है, और विशेषकर उस स्थान पर जहां ये गैर यहूदी राष्ट्र उन्हें नहीं चाहते, प्राचीन यहूदी मातृभूमि इसराइल। हमने देखा है कि इस क्षेत्र में शांति लाने के लिए बनाई गई हर योजना कुछ ही समय में नरसंहार में बदल गई। हमारे पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन का शांति के लिए रोडमैप स्वाभाविक रूप से कहीं नहीं गया।
वर्तमान प्रशासन के पास एक नई योजना है जो मूल रूप से हर चीज के लिए इसराइल को दोषी ठहराती है और इसराइल को घेरने वाले इस्लामी दुश्मनों से दोस्ती करती है। स्थिति सुलझने की राह पर नहीं है, यह 5 साल पहले की तुलना में अलग है। इसराइल को विभाजित करने या उसकी भूमि को देने, उसकी सुरक्षा से समझौता करने, अधिक सहायता देने, सैन्य रूप से अपनी इच्छा को लागू करने या खंडित मुस्लिम धर्म के दिलों और दिमागों को जीतने के लिए उन्हें यह समझाने की हर संयुक्त राष्ट्र योजना कि शांति एक बेहतर विकल्प है, इसके बाद अनगिनत लोग मारे जाते हैं। मध्य पूर्व का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है अरियल। निराशाजनक दूसरे स्थान पर है और शायद पागल उसके बाद। निष्कर्ष यह है, ईश्वर के वचन पर विश्वास करने के अलावा मध्य पूर्व को समझने का कोई संदर्भ नहीं है। यहोवा पर विश्वास करने के अलावा, जिसने राष्ट्रों को बनाया और उन पर रहस्यमयी दिव्य प्राणियों बेनेई एलोहिम को स्थापित किया, लेकिन खुद के लिए राष्ट्रों से इज़राइल को अलग रखा, समस्या के स्रोत को समझने और यह सब कैसे होगा यह समझने का कोई तरीका नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि समस्या पर सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च किए जाने, लाखों लोगों के बलिदान और विनाश के साथ, और समाधान की रणनीति बनाने और उसे तैयार करने के लिए पृथ्वी पर सबसे अच्छे दिमागों को काम पर लगाए जाने के बावजूद, एक चीज जिससे कोई भी राष्ट्र इज़राइल सहित समाधान के लिए परामर्श नहीं करेगा, वह है राष्ट्रों को बनाने वाले ईश्वर का वचन। सृष्टिकर्ता से उन मामलों पर सलाह लेने से इनकार करने का मानव जाति का तरीका, जिन्हें केवल वही नियंत्रित और निर्धारित करता है, एक प्राचीन परंपरा है और पूरे इतिहास में कोई भी इस प्रलोभन से मुक्त नहीं रहा है। एक ऐसा प्रलोभन जिसके बारे में इसराइल के परमेश्वर ने इसराइल को सचेत रहने और उससे बचने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी मूसा के गीत में पाई जाती है।
पिछले सप्ताह हमने पद 11 पर समाप्त किया था, आइए पद 12 से शुरू करते हुए व्यवस्था विवरण 32 को फिर से पढ़ें। व्यवस्था विवरण 32:12 को पुनः पढ़ें अंत तक। इस बिंदु पर जब गीत में परमेश्वर द्वारा इज़राइल की सुरक्षा और पालन पोषण के बारे में इतने प्रेम से बात की गई है, और यह अद्भुत दिव्य प्रेम का प्रदर्शन है जो इज़राइल के अन्य देवताओं को अपनी पूजा और आराधना देने के निर्णय को और भी अधिक गंभीर बनाता है, प्रभु उन्हें याद दिलाते हैं कि यह वही थे जो शुरू से ही उनका मार्गदर्शन कर रहे थे और यह निश्चित रूप से किसी अन्य देवता या परमेश्वर की सहायता से नहीं था, जैसा कि होशे 13:4 कहता है।
सीजे भी होशे 13:4, तो भी मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं मिस्र देश ही से, और तुम मुझे छोर किसी परमेश्वर को और ना मुझे छोर किसी उद्धारकर्ता को जानते हो। 5, मैं तुम्हें रेगिस्तान में एक ऐसी भूमि में जानता था। दूसरे शब्दों में इज़राइल के लिए वैकल्पिक आध्यात्मिक स्रोत की मदद पर विचार करने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। इज़राइल के उद्धार के लिए महिमा यहोवा की होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से इन अन्य देवताओं में से किसी से भी मदद नहीं मिली, क्योंकि उन्हें मिस्र से बचाया गया था और एक अद्भुत भूमि में रखा गया था। पद 13 कहता है कि यह यहोवा था जिसने इज़राइल को पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर स्थापित किया। ऊंचे स्थान इज़राइल के केंद्रीय ऊंचे इलाकों को संदर्भित करते हैं। यह यहोवा था जिसने इज़राइल को सहारा दिया और उन्हें वह सब दिया जिसकी उन्हें सबसे अप्रत्याशित स्रोतों से भी जरूरत थी, जैसे चट्टानों से शहद और चट्टानों की दरारों से जैतून का तेल। यह यहोवा था जिसने इज़राइल के झुंडों को बड़ा किया और दूध और मांस का उत्पादन किया, और जिसने अपने लोगों के लिए खेतों को बेहतरीन गेहूं और झागदार शराब से भरने का आदेश दिया। वास्तव में शराब के बारे में यह वाक्यांश झागदार अंगूर का खून कहता है। अंगूर रक्त या अंगूर का खून शराब के लिए एक मुहावरा है। शराब की तुलना किसी भी तरह से खून से नहीं की जा सकती है, और न ही यह खून का प्रतीक है। शराब खुशी के लिए है, खून प्रायश्चित के लिए है। झाग उत्पन्न होने से यह स्पष्ट होता है कि जिसकी चर्चा की जा रही है वह वाइन मादक पेय है, न कि सीधे अंगूर का रस, क्योंकि जब अंगूर किण्वित होकर वाइन में परिवर्तित होते हैं तो झाग और बुलबुले बनते हैं। पद 15 में ध्यान पूर्ण स्थानांतरित हो जाता है।
यह इसराइल के लिए परमेश्वर की आशीष और देखभाल के विषय को पीछे छोड़ देता है तथा इसके स्थान पर ऐसे अच्छे और दयालु परमेश्वर के प्रति इसराइल की बेवफाई की बात करता है। इसराइल मोटा और संतुष्ट हो गया है, वे काफी आत्मविश्वासी हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है और कुछ ही समय में वे भूल गए कि उनके सभी सुख और समृद्धि का एकमात्र स्रोत परमेश्वर ईश्वर है। फिर भी अपने अद्भुत अस्तित्व के लिए उन्हें धन्यवाद देने के बजाय वे विभिन्न देवताओं को श्रेय देते हैं जिनके आगे उनके पड़ोसी झुकते हैं और जो उस युग के लिए प्रथागत था।
हमने कितनी बार धर्मोपदेश सुने हैं और बाइबल अध्ययनों में भाग लिया है जहां हमें इब्रानियों की इस विनाशकारी प्रवृत्ति का सामना करना पड़ा है
कि वे अपनी वफादारी को विभाजित करते हैं और अन्य देवताओं को शामिल करते हैं, और हम उन भविष्य वक्ताओं से सहमत होते हुए नकली घृणा में अपना सिर हिलाते हैं जो हमें इस धर्म त्याग के बारे में बताते हैं। अक्सर हमें बताया जाता है कि इसी कारण से परमेश्वर ने अपने अलग किए गए लोगों को त्याग दिया और अस्वीकार कर दिया और उनकी विरासत गैर यहूदी चर्च को दे दी। मैं रिकॉर्ड को सीधा कर दूं, सबसे पहले प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को अस्वीकार नहीं किया है और इसके बजाय चर्च को अपना ध्यान और अनुग्रह दिया है। दूसरा, हम विश्वासी लगभग सार्वभौमिक रूप से वही करने के दोषी हैं जिसके लिए इसराइल पर अभियोग लगाया जा रहा है ना? हर बार जब हम अपने अच्छे भाग्य के लिए खुद की पीठ थपथपाते हैं, अपने आराधनालय या चर्च को बढ़ाने के लिए अपनी उत्कृष्ट विपणन योजना या नई सुविधाओं का श्रेय देते हैं, या जब भी हम अपनी इच्छाओं और चाहतों और परंपराओं को उन चीजों से आगे रखते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर का मार्ग है, तो हम अपनी निष्ठाओं को विभाजित करते हैं और अन्य देवताओं को श्रेय और महिमा देते हैं। पद 15 की शुरुआत में अजीब शब्द येशुरुण इब्रानी में धर्मी के लिए है। यह इसराइल के लिए एक विशेषण है। इसराइल ने अपने सृष्टिकर्ता को त्याग दिया और चट्टान से दूर हो गया। लेकिन इस पद के अंतिम कुछ शब्द और भी दिलचस्प हैं और अंग्रेजी अनुवाद इब्रानी भाषा के एक आकर्षक उपयोग को शामिल करते हैं। अधिकांश बाइबलें हमारे श्रठ के अनुसार कहेंगी और उसने इसराइल ने अपने उद्धार की चट्टान को ठुकरा दिया, या उसने इसराइल ने अपने उद्धार की चट्टान की निंदा की। मूल इब्रानी में वास्तव में यह कहा गया है कि इसराइल ने यीशुआ की चट्टान को ठुकरा दिया। यह सही है, उसका उद्धार, ईश्वर का उद्धार शब्द इब्रानी में यीशुआ है, जो हमारे मसीहा का दिया गया इब्रानी नाम है। यदि केवल चर्च यह समझने के लिए तैयार हो कि यीशु नाम इब्रानी नाम यीशुआ का अंग्रेजी अनुवाद है, तो पवित्र शास्त्र के उन अंशों में बहुत अधिक अर्थ जुड़ जाएगा जिन्हें बड़े पैमाने पर अनदेखा किया जाता है।
फिर भी जब यह चौंकाने वाला और अप्रत्याशित प्रकाशन यहां पद 15 में होता है, जिसमें चट्टान को यीशुआ कहा जाता है, तो यह एक ऐसा कीड़ा खोल देता है जिसे कई धर्मशास्त्री जल्द ही बंद कर देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह यीशु मसीह, मसीहा, यीशुआ हमारे उद्धार की चट्टान का संदर्भ है। यह याद करते हुए कि यह व्यवस्था विवरण के समय से बहुत दूर भविष्य के समय की बात करता है, हमें बताया गया है कि इसराइल परमेश्वर द्वारा उन्हें प्रदान किए जाने वाले उद्धार को ठुकरा देगा और यहां तक कि उसकी निंदा भी करेगा। मैंने कई बार उल्लेख किया है कि बाइबल की भविष्यवाणियां आमतौर पर एक बार की घटनाएं नहीं होती हैं। बाइबल के विद्वानों ने लंबे समय से माना है कि अधिकांश भविष्यवाणियां होती हैं और फिर बाद में फिर से होती हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण है कि इसराइल को एक बार नहीं बल्कि 3 बार निर्वासित किया गया। इसराइल का मूर्ति पूजा में गिरना, फिर से बहाल होना और फिर से यही सब करना बदनाम है। यहां तक कि ईश्वर विरोधी, क्राइस्ट विरोधी द्वारा पवित्र मंदिर में प्रवेश करने और अपनी एक मूर्ति स्थापित करने और उसकी पूजा करने की मांग करने की अंतिम समय की गाथा भी इसराइली इतिहास में पहले ही हो चुकी है, लेकिन यह हमारे लिए भी भविष्य में कभी कभी फिर से घटित होगी। पहली बार यह सीरियाई गवर्नर एंटियोकस एपिफेनीज ने 167 ईसा पूर्व के आसपास किया था। उसकी सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और फिर उसने खुद को
पवित्र मंदिर में एक देवता के रूप में स्थापित कर लिया। हम इसके बारे में मैकाबीज की किताबों में पढ़ते हैं और हम यह भी पढ़ते हैं कि कैसे यहूदा मैकाबी के नेतृत्व में यहूदी विद्रोहियों ने कुछ साल बाद मंदिर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया, उसे साफ किया और गोल्डन मेनोराह को फिर से जलाया। इस अवसर को एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है जिसे मसीहा ने भी स्वीकार किया था, हनुका, और यह तथ्य नया नियम गॉस्पेल में दर्ज है। हनुका को समर्पण का पर्व, या बेहतर कहें तो पुनः समर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह मंदिर को इज़राइल के परमेश्वर को पुनः समर्पित करने के बारे में था।
मुद्दा यह है कि जब यहोवा ने आने वाली शताब्दियों में कई मौकों पर इज़राइल को बचाया तो उद्धारकर्ता यीशु मूसा के गीत में निहित येशुरून के बारे में भविष्यवाणी का एक और प्रकटीकरण होगा। इसलिए हमें अध्याय 32 के अगले पदों में आने वाली बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह सब हमारे लिए बहुत आसान है। हम आधुनिक समय के विश्वासी इस गीत के लिखे जाने के समय से बहुत दूर के लिए यह भूलना बहुत आसान है कि जिस तरह हम पहले से ही परमेश्वर की कृपा से छुड़ाए जा चुके हैं, उसी तरह यह इज़राइल के लिए भी था। यह गीत उन लोगों के लिए नहीं लिखा गया था या उनके लिए नहीं बनाया गया था जिन्हें छुड़ाया नहीं गया था। परमेश्वर इसे उन लोगों को संबोधित कर रहा था जिन्हें उसने 40 साल पहले मिस्र से छुड़ाया था और वे छुड़ाए गए थे। मूसा की मृत्यु के बाद आने वाले वर्षों में जो इसराइली धर्म त्याग करेंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जैसा कि यह गीत भविष्यवाणी करता है, वे भी छुड़ाए गए लोगों का हिस्सा थे। इसलिए कृपया समझें कि यह गीत मूर्ति पूजकों या साधकों से बात नहीं कर रहा है, यह प्रभु के छुड़ाए गए लोगों से बात कर रहा है। अतीत में इसे केवल इज़राइल के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, बाइबल के पैटर्न और सिद्धांत कभी नहीं बदलते हैं। अतः लगभग 30 ईस्वी से परमेश्वर के छुड़ाए हुओं में यीशु के सभी शिष्य शामिल हैं, आप और मैं। पद 16 में थोड़ा और विस्तार से बताया गया है कि परमेश्वर को त्यागने की अवधारणा का क्या अर्थ है। ठीक वैसे ही जैसे इस गीत की शुरुआत में हमें इस बारे में कुछ जानकारी मिली थी कि परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर से प्रेम करना का क्या अर्थ है। मैं इसे फिर से दोहराता हूं ताकि कोई गलती न हो। केवल वे ही लोग परमेश्वर को त्याग सकते हैं जिनके पास परमेश्वर है। आप किसी ऐसी चीज को नहीं छोड़ सकते जो आपके पास कभी नहीं थी। मूर्ति पूजकों और साधकों पर कभी भी ईश्वर को त्यागने का आरोप नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही ईश्वर नहीं था। जिनके पास ईश्वर है वे छुटकारे का लोग हैं, और ईश्वर को त्यागने की दिशा में पहला कदम हमारे जीवन में विदेशी चीजों को शामिल करना है, ऐसी चीजें जिनका विश्वासी की छुटकारे का जीवन शैली में कोई स्थान नहीं है। यहां पद 16 में संदर्भ विशेष रूप से उस दिन की सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए था जिसमें धूप जलाना और विदेशी देवताओं से प्रार्थना करना या लकड़ी या पत्थर की मूर्तियां रखना शामिल था। लेकिन यह सब नहीं है। यह भी कहता है कि इज़राइल ने उसे घृणित कार्यों से उकसाया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने ईश्वर को क्रोधित किया। घृणित कार्य क्या है? इब्रानी में शब्द टोएवा है और इसका अर्थ है किसी भी असामान्य रूप से अशुद्ध चीज के साथ संगति करना, जिसके बारे में तोरह ने इसराइलियों को बताया है कि वे उनके लिए नहीं हैं। यह अशुद्ध खाद्य पदार्थों, अशुद्ध बलिदानों, अशुद्ध यौन गतिविधि, बीजों या जानवरों के अनुचित मिश्रण, कपड़े में धागे के अनुचित मिश्रण, समलैंगिकता आदि का उल्लेख कर रहा है। स्मरण करें कि विशेष रूप से निर्गमन और लैव्य व्यवस्था में और तोरह की अन्य पुस्तकों में भी कुछ ऐसे पाप थे जिन्हें यहोवा की दृष्टि में असाधारण रूप से बुरा माना गया था और उन्हें घृणित कहा गया था। गीत आगे बताता है कि उन्होंने राक्षसों, गैर देवताओं और उन देवताओं को भी बलि दी जिन्हें वे नहीं जानते थे, यहां तक कि नए देवता भी जो हाल ही में आए थे, ऐसे देवता जिन्हें इसराइल के कुलपिताओं और पूर्वजों ने श्रद्धांजलि नहीं दी थी। यह झूठे देवताओं के लिए समानांतर शब्दों की सूची नहीं है, यह उन विदेशी चीजों की सूची है जिनके लिए इसराइल ने गलत तरीके से बलि दी थी। मुझे यह सूची सबसे अधिक जानकारी पूर्ण लगती है, क्योंकि इसमें कई तरह के देवता शामिल हैं। यदि आप चाहें तो
सूची में राक्षस भी शामिल हैं, जो निश्चित रूप से लोगों की कल्पनाओं की उपज नहीं है। राक्षसों का विषय लंबा और जटिल है और हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जान लें कि ये वास्तविक आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो परिभाषा के अनुसार परमेश्वर का विरोध करती हैं। वे दुष्ट आध्यात्मिक संस्थाएं हैं और हम पढ़ते हैं कि यीशु ने खुद एक से अधिक अवसरों पर इन दुष्ट आत्माओं से निपटा था। वास्तव में हालांकि यहां राक्षस शब्द भी बिल्कुल सही नहीं है। इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द शेड है और यह आम तौर पर मृतकों की आत्माओं को संदर्भित करता है। हम बाइबल में शेओल के शेदिम का संदर्भ पाएंगे, जो मृतकों के स्थान से आने वाली आत्माएं हैं। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि यह केवल दुष्ट आत्माओं को ही संदर्भित करता है, क्योंकि वे मृत लोगों की आत्माएं हैं, लेकिन पूरा विचार यह है कि चूंकि मृत्यु परम अशुद्धता है, इसलिए मृतकों की आत्मा से निपटना एक दुष्ट इकाई के साथ सबसे खराब तरह का संबंध है जिसकी कल्पना की जा सकती है।
अब मैं यहां एक पल के लिए रुकता हूं। मृतकों की आत्माओं से परामर्श करने की प्रथा वर्तमान में बहुत प्रचलित और इतनी लोकप्रिय है कि अगर यहां किसी के पास कोई पारिवारिक सदस्य हो जो किसी आध्यात्मिक माध्यम के पास जाकर अपने किसी प्रिय दिवंगत पारिवारिक सदस्य की आत्मा से संपर्क करने का प्रयास करना लाभदायक समझता हो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हमारे पास अब पूरे टीवी कार्यक्रम हैं जो उन लोगों को समर्पित हैं जो मृतकों की आत्माओं से संवाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और सभी खातों के अनुसार कुछ सफल भी होते हैं। ये वही है जिसके बारे में यहां पद 17 में बात की जा रही है, और यह हास्यपूर्ण नहीं है और इसे विश्वासियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी ऐसी किसी चीज में शामिल न हो, क्योंकि प्रभु इसे आपके द्वारा किए जा सकने वाले सबसे अपमानजनक कामों में से एक मानते हैं, और वे इसे मृत्यु की उस आत्मा के पक्ष में आपका त्याग मानते हैं।
अगला शब्द जो हमारे सामने आता है वह है गैर देवता, लेकिन इसका शाब्दिक अनुवाद कोई देवता नहीं, लो एलोहिम है। यह लोगों की उपजाऊ कल्पनाओं या बेहतर उपजाऊ दुष्ट प्रवृत्तियों की कल्पना को संदर्भित करता है। उन्हें लगता है कि वे किसी देवता या किसी तरह के आध्यात्मिक प्राणी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे बस अपने विकृत विचारों को वास्तविकता के साथ भ्रमित कर रहे हैं। फिर एक तरह की आध्यात्मिक इकाई है जिसके साथ इब्रानी लोग धर्म त्याग कर सकते हैं, और ऐसे देवता जिन्हें वे कभी नहीं जानते थे कहकर उनकी पूजा कर सकते हैं। ये विदेशी देवता हैं जिनका इज़राइल से कोई लेना देना नहीं था। और अंत में, जैसा कि एक टिप्पणीकार ने कहा, इस तरह का देवता हाल ही में आया है, या अमेरिकी बोलचाल की भाषा का उपयोग करें तो वे हाल ही में आए देवता हैं। मैं इन आध्यात्मिक संस्थाओं के बारे में सभी भयानक विवरणों को पूरी तरह से जानने का दावा नहीं करूंगा जो वास्तविक हैं, या आध्यात्मिक कल्पनाएं जो वास्तव में मौजूद नहीं है। हालांकि जैसा कि हमने अय्यूब, दानियेल और बाइबल के अन्य अंशों से सीखा है, रहस्यमय दिव्य प्राणी बेनी एलोहिम हैं जिन्हें यहोवा ने बनाया है और विभिन्न राष्ट्रों और उनसे झूरी भूमि जोतों पर अधिकार दिया है। हालांकि वे पूरी तरह से स्वतंत्र प्राणी नहीं हैं, न ही वे स्वयं निर्मित हैं, कुछ स्पष्ट रूप से ईश्वर के विरुद्ध हो गए हैं और उनकी इच्छा नहीं करते हैं। हजारों साल पहले इब्रानी ऋषियों के बीच बहुत विचार था कि इनमें से कुछ दिव्य प्राणी, जिनके पास अपने निपटान में जबरदस्त शक्ति रही होगी, ने खुद को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया और पूजा जाना चाहते थे, और ये देखना आसान होगा कि कैसे मूर्ति पूजक विशेष रूप से इन ईश्वर के पुत्रों को अधीनस्थ आध्यात्मिक प्राणियों के बजाय वास्तविक देवताओं के रूप में देख सकते थे। फिर भी यहां क्षेत्रीयता का निहितार्थ भी है, और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि प्राचीन लोगों में यह सोचना आम बात थी कि सभी देवता क्षेत्रीय थे, और हमें उत्पत्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परमेश्वर ने विभिन्न राष्ट्रों, एकमात्र अपवाद इज़राइल है, पर परमेश्वर के पुत्रों बेनेई एलोहिम को स्थापित किया। इसलिए जबकि ये दिव्य प्राणी किसी भी तरह से वास्तविक देवता नहीं हैं, वे मौजूद हैं, वे परिभाषा के अनुसार क्षेत्रीय हैं और उनमें से कुछ लोगों के अंधविश्वासों और बुरे झुकावों का शिकार हो सकते हैं और खुद को देवताओं के रूप में पूजा जाने दे सकते हैं। हमें पुराना नियम और नया नियम में स्वर्गदूतों द्वारा लोगों को उनकी पूजा न करने की चेतावनी देने के कई उदाहरण मिलते हैं, भले ही उनका रूप और उनकी शक्तियां भयानक रही हों। यहां तक कि प्रेरितों ने भी उनके साथ ऐसा न करने की चेतावनी दी थी जब उन्होंने किसी तरह का चमत्कार किया था और लोग सहज रूप से उनके सामने झुक गए थे। इसलिए यह सोचना कि इन परमेश्वर के पुत्रों में से एक जो किसी राष्ट्र या किसी अन्य पर शासन करता था, परमेश्वर के सेवक के बजाय उस राष्ट्र के देवता के रूप में लिया जाना पसंद करता था, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर गीत 18वें पद में वापस आकर इज़राइल पर एक बहुत ही अस्वाभाविक बात का आरोप लगाता है, जिसने उन्हें जीवन दिया, उसे भूल जाना। ये चट्टान ही थी जिसने उन्हें बनाया और चट्टान ही थी जो उन्हें वादा किए गए देश में ले आई। यह परमेश्वर की बात करता है जिसने उन्हें जन्म दिया, लेकिन साथ ही परमेश्वर की भी बात करता है जिसने उन्हें जन्म दिया। यह परमेश्वर को इज़राइल की मां और पिता बनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप भूल जाएं कि आपके जन्मदाता माता पिता कौन हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर दें और अपने अस्तित्व का श्रेय किसी और को दें? इसलिए इज़राइल ने जो कुछ भी किया है उसके अलावा इसका मतलब यह है कि इज़राइली अपने पिता और माता, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहोवा हैं, का सम्मान करने की आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहे हैं। और याद रखें कि अपने माता पिता का अपमान करने की सजा सबसे गंभीर है, मृत्यु। इस प्रकार मूसा के गीत का एक भाग सबसे भयानक निहितार्थों के साथ शुरू होता है। यह एक छुराए हुए लोगों की बात करता है जिन्होंने अपने उद्धारकर्ता को त्यागने का निर्णय लिया है और जवाब में परमेश्वर का निर्णय उन्हें बुराई के हवाले कर देना है। मैं इसे और अधिक आधुनिक शब्दों में कहता हूं, वे अपने उद्धार से दूर जा रहे हैं। और मैं बहुत स्पष्ट हूं, यह एक ऐसा उद्धार है जो पहले से ही उनका था और जिसका वे पहले से ही आनंद ले रहे थे। समस्या यह थी कि अपने उद्धार के बीच में उन्होंने खुद को घृणित चीजों के साथ साझा करने का फैसला किया। परमेश्वर के साथ अपने मिलन के अलावा उन्होंने खुद को बुरी अशुद्ध चीजों के साथ मिला लिया। क्या उन्होंने ईमानदारी से सोचा था कि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ छुरे रहेंगे? जाहिर है ऐसा है। और हम में से कितने लोग ईमानदारी से मानते हैं कि हम उद्धार की प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु का नाम पुकार सकते हैं और फिर सभी प्रकार के घृणित कार्यों में भाग ले सकते हैं, कि हम सभी प्रकार की अशुद्ध चीजों के साथ मिल सकते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और परमेश्वर बस आंख मारेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे? मत्ती 7:22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे कुकर्म करने वालों, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 23, फिर मैं उनके मुंह पर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, यहां से चले जाओ। पद 19 में सीधे सीधे कहा गया है, पिता कहता है, मुझे त्यागने के कारण मैं अपने बेटे बेटियों का तिरस्कार करूंगा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा। चेहरा इब्रानी में पैनिम है और ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है उपस्थिति के अर्थ में चेहरा। परमेश्वर अपने लोगों से अपनी उपस्थिति हटा देगा। आज अपने लोगों में परमेश्वर का चेहरा, उनकी उपस्थिति कहां है? हमें बताया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे साथ है वह रुआंक हाकोदेश पवित्र आत्मा है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो परिभाषा के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो परिभाषा के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ मौजूद नहीं है। और वह कहता है कि अब जब मैंने अपने लोगों से अपनी उपस्थिति हटा ली है तो देखते हैं कि उनका क्या होता है। यह निश्चित रूप से एक बयानबाजी है। परमेश्वर स्पष्ट रूप से जानता है कि क्या होगा। इसका मतलब यह है कि चूंकि ये लोग सोचते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं और सोचते हैं कि उनके सभी आशीर्वाद किसी और स्रोत से आए हैं, इसलिए यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा जब परमेश्वर की उपस्थिति, सुरक्षा और आशीर्वाद जो इतने सहज हो गए हैं कि वे अब उनके लिए बेकार हैं, उनसे दूर हो जाएंगे। और निश्चित रूप से यही पैटर्न और विचार नया नियम पदों में अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है, जिसे मैंने अभी मत्ती 7 में पढ़ा है, जहां पूरी तरह से हैरान लोग जो अपने मन में सुरक्षित और स्वस्थ विश्वासी थे, यीशु को यह कहते हुए सुनते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि वह मसीहा थे, यहां तक कि कुछ काम करने के लिए उनके नाम का आह्वान भी किया, वे वास्तव में अधर्म के कार्यकर्ता थे, वे परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करते थे, और इसलिए यीशु ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। मैं स्पष्ट कर दूं, इन लोगों ने सोचा कि वे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करना, बातचीत करना, विश्वासियों के समुदाय के बीच रहना, लेकिन फिर अपनी मर्जी से चलते रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं की परवाह न करना, बेशक अधर्म का यही अर्थ है। जैसा कि हमने पहले देखा कि इस तरह की बात को परमेश्वर खुद को त्यागने के रूप में देखता है। दोस्तों, यह रूपक नहीं है, यह मेरे नियम भी नहीं है, यह केवल वही है जो पवित्र शास्त्र कहता है। यहोवा के लिए यह मायने नहीं रखता कि जब हमने अपने जीवन में इन बुरी चीज़ों को शामिल किया और जब हमने उन अशुद्ध चीज़ों के साथ जुड़ने का फैसला किया जिन्हें उसने हमारे लिए निषिद्ध घोषित किया है, तो हमें नहीं लगता कि हमने उसे त्याग दिया है। प्रभु परिभाषाएं और सीमाएं निर्धारित करते हैं, यह बातचीत का विषय नहीं है। प्रभु में स्वतंत्रता का मतलब अवज्ञाकारी होने की स्वतंत्रता या उसकी उपस्थिति जो हमारे भीतर रहती है को पाप और अपवित्रता के संपर्क में लाने की स्वतंत्रता नहीं है। इस मामले में प्रेरित पौलुस बार बार बोलता है, यहोवा के प्रति इज़राइल की बेवफाई के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इज़राइल को अनुशासित करने का संकल्प लिया, अपनी सुरक्षा हटाकर और फिर उन्हें शत्रुओं के आक्रमण और सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के अधीन करके। प्रभु पवित्र युद्ध प्रोटोकॉल को उलट रहा है, इज़राइल के आक्रमण करने और परमेश्वर के मार्ग प्रशस्त करने के बजाय उन पर आक्रमण किया जाएगा और वे हार जाएंगे क्योंकि परमेश्वर इसमें नहीं है। अपने विश्राम के देश में सुरक्षा और शांति में रहने के बजाय इज़राइल को एक क्रूर स्वामी के अधिकार के तहत उनकी दासता के देश में वापस भेज दिया जाएगा। पद 21 में एक बात को स्पष्ट करने के लिए शब्दों का खेल किया गया है। इन समय कहा गया है कि चूंकि इज़राइल ने परमेश्वर को त्याग कर उसकी ईर्ष्या को जगाया, परमेश्वर को नाराज किया और अपने स्नेह को लो एलोहिम गैर देवताओं की ओर मोड़ दिया, इसलिए अब वह अपनी उपस्थिति को हटाकर और उन्हें लो अम्मी गैर लोग के हवाले करके उन्हें नाराज करेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर इज़राइल को इसी तरह से दंडित करेगा। इज़राइल ने जिन देवताओं की ओर रुख किया वे यहोवा के प्रति वफादार आत्मिक प्राणी नहीं थे, इसलिए वह इज़राइल को ऐसे विजयी लोगों के हवाले कर देगा जो यहोवा के प्रति वफादार नहीं है। गैर लोग शब्द को शायद हमारी आधुनिक बोलचाल की भाषा में मेरे लोग नहीं कहकर बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। गैर लोग इस अर्थ में गैर लोग हैं, खासकर उस युग में। अम्मी लोग इज़राइली थे जबकि लो अम्मी गैर लोग बाकी सभी लोग थे। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि किसी विशेष राष्ट्र जैसे एदोम या कनान या हित्ती को गैर लोग कहा जा रहा था, ये सामान्य रूप से गैर लोग ही थे। सदियों बाद भविष्यवक्ताओं के लेखन में हम इस भविष्यवाणी की चेतावनी के बारे में पढ़ते हैं। अपनी बाइबल में होशे की किताब खोलिए, आज हम इस पर कुछ ही मिनट बिताएंगे।
होशे 1:1-3 पढ़ें।
होशे ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के मध्य में रहते थे और लिखते थे। इसराइल लगभग 175 से 200 वर्षों तक राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद से एक विभाजित राष्ट्र रहा था। अब दो राज्य थे जहां इसराइल की गोत्रियां रहती थीं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी राज्य को अधिकांश बाइबलें इसराइल कहती हैं, हालांकि ये वास्तव में थोड़ा गलत है। इसे वास्तव में एप्रैम या एप्रैम इसराइल कहा जाता था क्योंकि वहां 10 इसराइली गोत्र रहती थीं और एप्रैम शासक था। दक्षिणी राज्य को यहूदा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां 2 गोत्र रहती थीं, बेंजामिन और यहूदा। यहूदा बरी और अधिक शक्तिशाली शासक गोत्र थी। एप्रैम इसराइल एक राजनीतिक आपदा क्षेत्र था। इसमें दुष्ट राजाओं की एक पूरी श्रृंखला थी जिसने लोगों को हर तरह के धर्म त्याग में धकेल दिया। वे यहां तक पहुंच गए कि जैसा कि आज इसराइल के साथ है, आबादी का एक अच्छा हिस्सा और उनका नेतृत्व अब परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग नहीं बनना चाहता था, बल्कि इसके बजाय ऐसे लोग बनना चाहता था जो अपने पड़ोसियों की तरह दिखते और काम करते थे। यहूदा केवल मामूली रूप से बेहतर था, कम से कम दाऊद के राजवंश ने शासन करना जारी रखा था, और सामान्य तौर पर यहूदा ने परमेश्वर के लोग बने रहने की इच्छा प्रदर्शित की, मूर्ति पूजा के साथ उनके निरंतर इश्कबाजी के बावजूद।
होशे इब्रानी लोगों, विशेष रूप से उत्तरी राज्य को चेतावनी दे रहा था कि प्रभु आखिरकार वही करने जा रहा था जिसकी उसने मूसा के गीत में धमकी दी थी। और निश्चित रूप से होशे की पुस्तक में हम एप्रैम इसराइल पर अपने क्रोध को लाने के लिए परमेश्वर के कारणों का यह चित्रण देखते हैं, जो कि उनके भविष्य वक्ता होशे को एक वेश्या से विवाह करने के उनके निर्देशों में रूपक रूप से दर्शाया गया है। यह एप्रैम इसराइल के साथ परमेश्वर के विवाह जैसे मिलन के बराबर है, जो अपने मूर्ति पूजक पड़ोसियों के साथ वेश्या का खेल खेल रहा था, जो कि नाजायज प्रेमी है। फिर होशे की यह वेश्या पत्नी 3 बच्चों को जन्म देती है, यिज्रेल जिसका अर्थ है परमेश्वर बोता है, लो रुचामा जिसका अर्थ है कोई दया नहीं, कोई दया नहीं, और लो अम्मी जिसका अर्थ है मेरे लोग नहीं। विचार यह है कि मूसा के गीत में परमेश्वर कहता है कि इसराइल के व्यभिचार के कारण परमेश्वर इसराइल यिज्रेल में विपत्ति बोएगा और वह अपने लोगों लो रुचामा पर कोई दया नहीं दिखाएगा, और एप्रैम इसराइल को गैर लोगों के हाथों में सौंप दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप वे समय के साथ गैर लोग लो अम्मी बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे गैर लोगों के साथ संगति करने के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के लोगों के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं। बेशक हमने अभी व्यवस्था विवरण 32 में मूसा के गीत में उस न्याय के स्रोत के अर्थ का अध्ययन किया है। प्रभु एप्रैम इसराइल को गैर लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं, जहां एप्रैम इसराइल के सदस्य भी लो अम्मी गैर लोग बन जाएंगे, क्योंकि वे खुद को असीरियन साम्राज्य के गैर यहूदी परिवेश में मिला लेंगे। तथापि होशे अध्याय 2 में, जैसा कि हम बाद में मूसा के गीत में देखेंगे, अपने पवित्र नाम अर्थात अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए यहोवा एप्रैम इसराइल पर दया करेगा और अंततः वह एक बार फिर उन्हें अम्मी मेरे लोग और रुचामा दया किया हुआ कहेगा। उनके छुटकारे का उलटा होना पुनः छुटकारे में बदल जाता है। आइए हम व्यवस्था विवरण 32 पर वापस आते हैं और आज के लिए काम समाप्त करते हैं।
अब हमें एक और चौंकाने वाला संदर्भ मिलता है जो स्पष्ट है। पद 22 कहता है कि परमेश्वर के क्रोध में आग भड़क उठी है और यह आग अधोलोक की गहराई तक, धरती के भीतर पहाड़ों और पहाड़ियों के नीचे तक जल जाएगी। अधोलोक अधोलोक है, यह कब्र है, और एक हद तक शरीर और या आत्मा से जो कुछ निकलता है वह एक व्यक्ति के मरने और दफन होने के बाद होता है। और यह कहता है कि वे सभी जिनसे परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया है, इस मामले में इसराइल, उन्हें एक कब्र अधोलोक में भेजा जाएगा जो उसके क्रोध से आई आग से भरी हुई है। एक अधोलोक की कल्पना आग से भरा अंडरवर्ल्ड हम सभी के लिए परिचित होना चाहिए,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नरक की आग कहां से आई, आग किसने लगाई, इसे कौन जलाता रहता है, उस आग का उद्देश्य क्या है? नरक यातनाओं का स्थान है और शैतान और उसके राक्षसों को कुछ समय के लिए वहां निर्वासित किया जा सकता है, लेकिन यह उनके लिए क्लब मेड नहीं है। वे इससे नफरत करते हैं, वे स्वर्ग में रहना चाहते हैं। यह परमेश्वर ही थे जिन्होंने शैतान और उसके विद्रोही सैनिकों को स्वर्ग से बाहर निकाला। यह परमेश्वर ही थे जिन्होंने नरक की आग को जलाया, और वे आग उनके आध्यात्मिक क्रोध का एक भौतिक प्रकटीकरण है। नरक की आग जो अधोलोक के नीचे स्थित है को सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा भड़काया जाता है, जैसा कि यहां व्यवस्था विवरण में कहा गया है, और आग का उद्देश्य अधर्मी मृतकों को भस्म करना है। और अंततः
अधर्मी आत्मिक दुनिया को भी। आग अनंत विनाश के लिए है। हम अगले सप्ताह मूसा के गीत पर चर्चा जारी रखेंगे।